Pakistan was my first missionary trip.
पाकिस्तान मेरा सबसे पहला मिशनरी ट्रिप था. मैं सबसे पहले जब मिशन में इस खिदमत में निकला तो मैं पाकिस्तान आया था. आमीन. 1973 का वाकया है.
I have great expectations of our time in Pakistan on this trip.
I have great expectations, great hopes.
मेरे दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है.
Because we will have a group of ministers to gather together.
क्योंकि हम कुछ खादमों का हम बंदोबस्त कर रहे हैं जिनको हम इकट्ठा करेंगे.
And let may the Lord make us of one mind and one accord.
और खुदा ने चाहा तो हम एक ही ज़हन रखेंगे और एक ही ग्रुप होकर काम करेंगे. आमीन.
Amen. Now, since we just officially opened this church,
क्योंकि हमने अब इस चर्च को अमली तौर पर शुरू कर दिया है.
I took some notes from when Brother Branham had expanded their church into a larger church and they rededicated the tabernacle.
मैं ब्रदर ब्रैनम के उन हवालात को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जब उन्होंने अपनी चर्च बिल्डिंग को बड़ा किया और उसको फिर मखसूस किया.
So I wanted to go over some of the thoughts that Brother Branham gave when he rededicated his tabernacle.
मैं चंद ख्यालात आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि भाई ब्रैनम ने जब उन्होंने उस गिरजे को दोबारा बनाने के बाद मखसूस किया.
And then also when Moses was told how to dedicate the very first tabernacle.
और इसके साथ हम मूसा के उस हवाला को भी देखेंगे जब उसे बताया गया कि वो उस पहली हैकल को किस तरह से मखसूस करे.
And we find that he sprinkled the blood.
और हम देखते हैं कि उसने बर्रे का खून लेकर उस पर छिड़का.
In three basic places.
और तीन बुनियादी जगहों पर.
On the tabernacle.
उस हैकल के ऊपर.
With all of its instruments.
और उसके सारे जो हथियार थे और उसके सारे साज बाज थे.
So we would say this place.
और उसे हम कहेंगे कि ये वो जगह थी.
Then he sprinkled the blood on the priesthood.
और फिर उसने कहन पर जो है वो खून जो है वो छिड़का.
That would be the ministry.
और ताकि वो उसकी खिदमत को पाक करे.
And then on the people.
और फिर इस तरह लोगों पर भी उसका छिड़काव किया गया.
All three places had to be dedicated to God.
इसलिए ये तीनों जगह जो है ये खुदा के लिए मखसूस की जानी चाहिए.
This place.
ये जगह.
This ministry.
ये खिदमत.
And this people.
और खुदा के लोग.
Amen. Now let's look at the book of Exodus.
आइए खरूज की किताब में से जरा जाकर देखें.
Now starting in chapter 25.
उसका 25वां बाब खरूज की किताब और उसका 25वां बाब.
No, I'm not going to read a verse. I just want to talk about it.
Okay.
Now we're about to open the word, so if you don't mind, let's pause for prayer.
आइए चूंकि हम खुदा के कलाम को पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें.
Lord Jesus,
प्यारे खुदावंद,
we love you.
हम तुझे प्यार करते हैं.
You are your word.
और तू चूंकि अपना कलाम है.
And so now we're looking into you, looking into your word.
अब हम तेरे में और तेरे कलाम पर नजर करना चाहते हैं.
May you take the speakers in the pulpit.
खुदावंद हमें अपने हाथों में ले.
And take the ears of the listeners.
और लोगों के कानों का जुमा ले.
And bring out what you want brought out.
ओ खुदावंद वो पेश कर जो तू चाहता है.
And then we'll be blessed.
और ताकि वो बरकत पाएं.
In Jesus name.
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं. आमीन. Amen.
Now I won't take the time to read this part here.
मैं यहाँ इसको पढ़ना नहीं चाहूँगा.
But Exodus chapter 25, 26, and 27.
लेकिन खुरूज का जो 25वां, 26वां और 27वां बाप है.
Moses is being told how to build the Old Testament tabernacle.
मूसा को ये बताया गया कि वो पुराने अहद की हैकल को किस तरह से तामीर करे.
And it was very important that it be built exactly according to the word of God.
और ये बहुत जरूरी था कि मूसा उसको वैसा ही बनाए जैसा खुदा ने उसे नक्शा दिखाया कलाम के मुताबिक.
If it was not according to the word, then God would not come into that place.
अगर ये खुदा के कलाम के मुताबिक नक्शा ना होता तो मूसा उसके तो खुदा उसके अंदर आकर ना रहता.
Now keep in mind the church is the body of Christ.
याद रखिए कि कलीसिया मसीह का बदन है, हैकल है. आमीन.
And also you individually are members of the body of Christ.
और आप सब फर्दन फर्दन इस बदन के अज़ा हैं.
So it all has to be according to the word of God.
इसलिए हम सबको खुदा के कलाम के मुताबिक नक्शे के मुताबिक होना चाहिए. आमीन.
Now in In chapter 25,
at verse
1 and 2,
uski pehli aur dusri ayat,
and the Lord spake unto Moses, saying,
aur khudavand ne Musa ko farmaya,
say unto the children of Israel that they bring me an offering.
Bani Israel se keh ye kehna ke wo mere liye nazre laaye.
Of every man that giveth willingly with his heart, you shall take my offering.
Aur tum unhi se meri nazar apnana lena jo apne dil ki khushi se dein.
Now when I read this, I was thinking of the way this church was built.
Jab main ye pad raha tha to mere zehen ke andar ye soch thi ki ye girja jo hai ye kis tarah se bana hai.
It came from the offerings that were given because God laid it on people's hearts to give the land, give money, give labor.
Amen. Ye is tarah se wujood mein aaya hai ki khuda ne ye baat jis tarah Musa ko kaha ki wo nazre laaye, logon ne jagah di hai, paise diye hain, nazrane diye hain aur is tarah se ye girja jo hai ye wujood mein. Amen.
But we find all through the scripture that it is God who puts it in the heart of the person to do that.
Hum kalam e muqaddas mein ye dekhte hain ki ye khuda hai jo logon ke dilon ke andar ye baat dalta hai ki is tarah se karo. Amen.
So it is not really the person.
ये कोई आदमी की बात नहीं है.
It is God puts it in his heart.
एक खुदा की बात है जो उसके दिल के अंदर रखता है.
Though the person will be blessed for it.
क्योंकि लोगों को तो इसके सबब से बरकत मिलेगी.
But ultimately it was God.
लेकिन हम ये जानते हैं कि ये खुदा का इक्तदाम है जो उसने अपने लोगों के अंदर डाला है.
Okay, now the first two verses we've got offerings coming in.
हम देखते हैं पहली दो आयत में कि नजराने जो हैं वो लोग लेकर आने लगे.
Verse 8.
उसकी आठवीं आयत.
And let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं.
According to all that I show thee after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it.
और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैंने तुझे दिखाया था ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे जानना.
So Moses was under instruction by God, do it this way.
Musa ko khuda ne wo tamam jo hain tarika kar aur ahkam diye taaki wo is tarah se us haikal ko banaye.
Now let's go to the book of Ephesians.
Aaiye Ephesians ke khat mein bhi chale.
Chapter 2.
Ephesians 2 bab.
Verse 19.
दो बाप और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे.
Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God.
पस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो.
And are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone.
और उस पत्थर पर जो मसीह यीशु है तामीर किए गए हो.
In whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord.
और उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है.
In whom you also are builded together for a habitation of God through the Spirit.
और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन हो.
So here he's saying the whole church is built on the a proper foundation.
हम यहाँ देखते हैं कि वो कहता है कि कलीसिया जो है वो एक बुनियाद के ऊपर कायम है जो कि मुकम्मल और कामिल है.
And that's a dwelling place of God.
और ये खुदा के रहने की जगह है.
And you individually are like building blocks in that church.
और आप सब बाहम मिलकर एक और एक उसमें बाहम तमीर किए जाते हैं.
When we think of the building of Solomon's temple,
जब हम सुलेमान की हैकल की तमीर को देखते हैं,
the Bible says,
बाइबल में लिखा है,
that down at the rock quarry,
उस कोरी के रॉक के ऊपर चट्टान के ऊपर,
they did all the cutting and shaping of each block.
तो वो वहाँ उन पत्थरों को काटकर, उनको अच्छी तरह से तराशकर वहाँ लाते थे.
All the noise was down at the rock quarry.
हम देखते हैं कि ये तमाम शोर शराबा और उसका तराशा जाना उस चट्टान के ऊपर था.
The saws, the hammers, the chisels.
हम देखते हैं कि हथौड़ा और छेनी और सारी चीजें आरा काटने वाला.
And then when the rock was brought to the temple site,
और जब ये चट्टान उस हैकल की तरफ लाई जाती थी,
it was just quietly slipped into place.
आमीन. तो ये बड़ी आराम से उस जगह पे लग लगा दी जाती थी जहां उसकी जरूरत थी.
There was no sound of tools anymore.
और उसके ऊपर हमें किसी और हथियार की आवाज वहां सुनाई नहीं देती है.
So if you're going through a lot of trouble in your life,
हाँ, अगर आप इस जिंदगी में मुश्किलात में से गुजर रहे हैं,
and you don't feel you're being used by God,
और अगर आप ये महसूस करते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा,
don't give up,
छोड़ ना दीजिए, घबराइए नहीं.
Maybe you're still in the rock quarry.
शायद अभी तक आप उस जगह पे हैं जहां आपकी छांटी और चुनाई की जानी ताकि आप अच्छी तरह से तराशे जाएं.
But when God has got you shaped the way He wants you to
be, और जब आप खुदा के कलाम के नमूने के मुताबिक तराशे जाएंगे,
He will just quietly place you in the body of
Christ. बड़े आराम से आपको लाकर उसमें तामीर कर देगा जहां आपकी जगह है.
Amen. You will function.
और जाओ आप पूरी तरह से वहां काम करेंगे.
But He has to shape you first.
लेकिन इससे पहले उसे अपने नमूने के मुताबिक आपको घड़ना है.
Second Corinthians.
दूसरा करिन्थियों.
Chapter 6.
उसका छठा बाब. दूसरा करिन्थियों उसका छठा बाब.
Verse 16.
और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे.
And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God.
और खुदा के मुकद्दस लोग मकद्दस लोगों को बुतों से क्या बनास्बत? क्योंकि हम जिंदा खुदा के मकद्दस हैं.
As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people.
क्योंकि खुदावन ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे.
Wherefore come out from among them and be you separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you.
इस वास्ते खुदा फरमाता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल करूंगा.
And will be a father unto you, you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.
और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियों होंगे. वो ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है.
So God is telling us we have to be a separated people.
इसलिए खुदा हमें बता रहा है कि हमें अलग होना है.
That's just the beginning of being shaped into the proper building stone.
ये वो मकाम है जहां खुदा हमें घड़ना और तनाशना शुरू करता है ताकि हम अलगगी इख्तियार करें.
Separate from the things of the world.
दुनिया की चीजों से हमें वो अलग कर ले.
Now in talking about this place.
इस जगह के बारे में गुफ्तगु करते हुए.
And its dedication to God.
जिस जो कि खुदा के लिए मुकद्दस की गई है.
Now in the front of the book we call the Seven Seals book.
आप एक किताब से वाकिफ होंगे जिसका नाम है सात मोरों की किताब.
The first book is God in Simplicity.
तो उसमें से पहली किताब का नाम है खुदा सादगी में.
And the first half of that is the rededication of Branham Tabernacle.
तो उसका आधा हिस्सा जो है वो उसकी तकदीस का है जो भाई ब्रैनम ने अपने उस चर्च की तकदीस के बारे में बयान किया.
We are listening to a prophet.
हम एक नबी को सुनते हैं.
And he knows how to get into the presence of God.
और वो जानता है कि लोगों को किस तरह खुदा की हजूरी में लाना है.
He knows how to please God.
वो जानता है कि खुदा को हम किस तरह से खुश कर सकते हैं.
So I think we need to listen to what he recommends.
इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए इन बातों को सुने जो वो हमें बताता है ताकि हम उस पर अमल करें.
He recommends.
वो हमें फरमाता है.
This is not in the Bible.
ये बाइबल के अंदर नहीं है.
But he recommends.
लेकिन वो हमें ये बताता है.
Try to be in the church building a half hour before the church service starts.
पहली बात उन्होंने हमें ये सिखाई कि इससे पहले कि हम इबादत को शुरू करें आधा घंटा पहले इस गिरजाघर के अंदर आएं.
So that you can quiet your own spirit.
ताकि आप अपनी रूह पर गलबा पाएं और इसे खुदा के लिए तैयार करें.
Get your mind cleared of the things of the world.
अपने ज़हन को दुनिया से हटाकर खुदा की तरफ लगाएं क्योंकि हम खुदा के घर में आए हैं.
Focus in on the things of God.
और उन सारी दुनियावी चीजों को भूल जाएं सिर्फ खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएं.
Read your Bible.
अपनी बाइबल को पढ़िए.
Pray.
दुआ कीजिए.
But put the world out and focus on God.
और दुनिया को बाहर निकालिए और खुदा को अपने अंदर लाइए.
And you can't do that in 5 minutes.
और ये आप 5 मिनट में नहीं कर सकते हैं.
You know that.
आप जानते हैं.
I know when I get sometimes trying to study to get ready to preach.
Main janta hu ki jab main kabhi koshish karta hu ki bayan karne se pehle munadi karne se pehle main kuch hasil karu,
it can take me anywhere from 30 minutes to 3 hours to just get into that channel.
To mujhe aisa karne ke liye taqreeban 30 minute se lekar 3 ghante darkar hain.
Where you finally begin to draw on the inspiration of God.
Aur iske baad main mehsoos karta hu ki khuda ka rooh meri rehnumai karna shuru karta hai.
And he said in the sanctuary,
और उसने फरमाया, उन्होंने कहा कि जब आप गिरजा में अंदर आ जाते
हैं, there should be silence.
तो वहाँ यहाँ आकर बातचीत ना कीजिए, बल्कि बिल्कुल खामोशी से
बैठिए. But if you want to pray,
अगर आप दुआ करना चाहते हैं,
that's all right.
ये ठीक बात है.
If you want to worship,
अगर आप प्रस्तुति करना चाहते हैं,
that's all right.
ये ठोक ठीक है.
That kind of noise is okay.
ये इस तरह का शोर जो है, ये ठीक है.
But don't talk to each other.
लेकिन एक दूसरे के साथ बात ना कीजिए.
Now he says, now maybe you could come to the front, what we call the altar.
उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि आप आगे आएं, जिसे हम मज़बा कहते हैं.
Says then, thank God for your loved ones that are being saved.
तो अपने उन लोगों के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें जो बच गए हैं.
Thank God for all His provisions in your life.
खुदा का शुक्र करें, खुदा ने आपको जो कुछ दे रखा है.
And then go back and take your seat.
और फिर वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाइए.
He said there should be no selling in any church, selling of books, selling of tapes.
हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गिरजों के बाद अंदर ही किताबें बेचना शुरू कर देते हैं और चीजें जो हैं वो खरीदो फरोख्त करते हैं. ऐसा गिरजे के अंदर नहीं होना चाहिए.
You can do that outside.
ये बाहर आप जाकर कर सकते हैं.
But not in the sanctuary.
चर्च के अंदर नहीं.
He said there should be no eating in the sanctuary.
ये भी हमने कल भी हमने सीखा कि इस गिरजा घर के अंदर कोई खाना नहीं खाया जाना चाहिए.
There should be no little passing of notes to each other.
और ना ही एक दूसरे को कोई कागजात या हवाला जात लिख कर देने चाहिए.
No chewing gum.
ना ही कोई chewing gum खाना चाहिए.
Now why should this be?
ये ऐसा क्यों होना चाहिए?
He said, because when you come into the church,
उसने बताया क्योंकि जब आप इस मुकद्दस जगह के अंदर आ जाते हैं,
you're coming into the presence of God.
तो आप खुदा की हजूरी में आ रहे हैं.
Because he said, where two or three are gathered in my name, I'll be there.
क्योंकि उसने ये फरमाया, जहां दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे. Amen.
So he said, one day we will walk up and kneel before the throne of Jesus Christ.
तो उसने कहा कि एक वक्त आएगा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और हमारी हाजरी खुदा यीशु मसीह के तख्त के सामने होगी.
Okay. He says, but now we should conduct ourselves as if he's sitting right here now.
तो उसने कहा कि आप भी अपने ज़हन के अंदर यूं ही रखिए कि यीशु मसीह यहाँ बैठा हुआ है. आमीन.
He says, and then we know how to show respect in
the
house of God.
तो इसके बाद जब आप ये जानेंगे कि यीशु यहाँ मौजूद है, फिर आप उसकी इज्जत करना जानेंगे, वरना नहीं.
As if Jesus were sitting right here.
जिस तरह के यीशु अभी भी यहाँ बैठा हुआ है, हमारे दरमियान है.
Then that will set a proper atmosphere for the Holy Ghost.
तो फिर वो आपके लिए रूह कुदस का माहौल जो है वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगा.
And for setting your church time,
और इस अपनी इबादत के औकात को मुकर्रर करने के
लिए, we're going to begin at 10:30.
उन्होंने कहा, जैसे कि हम कहते हैं कि हम 10:30 बजे शुरू करेंगे.
All right, now you haven't set an appointment with the pastor, you've set an appointment with God.
ये आपका यहाँ आना खादम के साथ नहीं है आपकी अपॉइंटमेंट, आप खुदा से मिलने आ रहे हैं.
If you say you're going to be here and the church service is going to start at 10:30, God's here to be with you.
और अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हम 10:30 बजे यहाँ होंगे, तो यकीन कीजिए कि खुदावंद यहाँ आपका मुंतजर है 10:30 बजे.
Don't keep him waiting.
उसको इंतजार करते मत रह छोड़ दीजिए.
If the time is 10:30, then start at 10:30.
और अगर आपने मुकर्र किया है कि हम 10:30 बजे आएंगे, तो यहाँ 10:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए और आपकी हाजिरी होनी चाहिए.
You might say, but what if all the people aren't here?
आप ये कह सकते हैं कि सारे लोग यहाँ क्यों हैं?
Start anyway.
किसी तरह भी शुरू कर दें.
If you're supposed to start at 10:30, start at 10:30.
मैं समझ गया. Excuse me. वो कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि सारे लोग नहीं आए, तो मत फिक्र कीजिए, आप 10:30 बजे शुरू कर दें. आमीन.
And then he says the you should have about now, not exact, but about a half hour of song service and worship.
तो हमारे ये वर्शिप का जो है या गीत गाने का वक्त जो है तकरीबन आधा घंटा होना चाहिए.
But the song leader needs to be a worship leader.
तो जो गाना कंडक्ट करने वाला है या मीटिंग लीड करने वाला है, उसको खुदा की हजूरी में प्रस्तुति का पता होना चाहिए.
It is not for a half hour, let's sing song number this, let's sing song number that.
हाँ, ये आधे घंटे के लिए सिर्फ यही नहीं है कि हम अब ये गाना गाएंगे और अब हम ये गाना गाएंगे.
We're supposed to be setting an atmosphere.
हमें एक माहौल जो है वो तैयार करना है.
So the song leader needs to know how to pull the people into a true worship.
आमीन. तो कंडक्ट करने वाले को, गीत गाने गवाने वाले को पता होना चाहिए कि लोगों को खुदा की हजूरी में किस तरह से मामूरी के लिए लाना है.
And that's the preparation for the word to come forward.
तो ये वो तैयारी है जिसके बाद खुदा का कलाम पूरी तरह से जिंदगी में आकर काम करता है.
And then he says, sometimes we'll have someone sing a special song.
तो बाज़ दफा कुछ हमारे पास लोग होते हैं जो कि एक खास गीत जो है वो गाना चाहते हैं.
Said something special for the glory of God.
ताकि ये खुदा के जलाल के लिए कोई खास बात है.
Not someone trying to show you what a good voice they have.
ना इस बात को दिखाने के लिए कि जो सामने खड़ा है उसकी कितनी अच्छी आवाज है.
But genuine worship to God.
लेकिन ये खुदा के लिए एक आम बात जो है खास बात है.
Now I don't know whether churches in Pakistan do what I'm going to say or not.
तो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि जो कुछ मैं कहने को हूँ वैसे ही यहाँ पाकिस्तान में सारी कलीसियाँ कर रही हैं या नहीं.
But many of the Pentecostal churches in America do this.
लेकिन बहुत सारे Pentecostal church अमेरिका में भी ऐसे करते हैं.
They say who's got a special song this morning?
तो वो यहाँ से ये अनाउंस करेंगे कि आज सुबह किसके पास कोई खास गीत है.
Somebody come up, sing a special for God.
तो कोई आएगा और खुदा के लिए यहाँ सिताइश करेगा खास तौर पर.
And the prophet said, "Don't do that."
तो नबी ने ये कहा ऐसा नहीं होना चाहिए.
He says, if that person has a true special, then it's already in their heart.
तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई खास गीत है तो वो उसके दिल के अंदर है.
Because God put it there.
क्योंकि खुदा ने उसको वहां रखा है.
And then they should let the song leader, the worship leader know ahead of time, I have a special.
तो वो उस बात का इजहार खुद ब खुद मीटिंग चलाने वाले को सर्विस शुरू होने से पहले कहेगा कि मेरे दिल के अंदर एक गीत है जो खुदा ने मुझे दे रखा है.
And then also the prophet said,
और इसी तरह नबी ने फरमाया,
because we have this happening in America, I don't know about here.
क्योंकि इस तरह से अमेरिका में होता है, मैं यहाँ का माहौल नहीं जानता.
Who's got a special testimony for Jesus this morning?
हाँ, कि आपके पास किसी के पास को खास आज गवाही है जो खुदा यीशु मसीह के लिए हो.
Okay, now who else has a special testimony?
किसी और के पास कोई अगर खास गवाही है.
And he says, don't do that.
उसने कहा यह ऐसा भी नहीं होना चाहिए.
He says, because the carnal-minded one will normally stand up first.
तो लिखा है कि दुनियावी तौर पर ज़हन रखने वाला इंसान जो है वो सबसे पहले उठ खड़ा होने की कोशिश करेगा.
And what he says will completely spoil the atmosphere that you're trying to set.
और चूंकि वो दुनियावी बात होगी, जो कुछ वो कहेगा वो सारे माहौल को तहस नहस करके रख देगा.
He said, if you want to have a testimony meeting,
अगर आप गवाही की इबादत रखना चाहते हैं,
that's fine,
ये अच्छी बात है.
And set aside a special time for that.
तो उसके लिए आप एक खास वक्त मुकर्रर करें जिसके अंदर लोग अपनी गवाही.
But don't do it at every service.
लेकिन हर इबादत में ऐसा ना करें.
Because you'll surely have a carnal spirit stand up and destroy the effects of the ministry.
क्योंकि इस तरीके से कुछ लोगों के अंदर जिस्मानी खास जो है वो भी पैदा हो सकती है कि वो अपनी तरफ से कुछ कह दें.
So now we've been talking about this place.
हम अब आज इस बात के इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं.
How we're to be dedicated to it.
और अब हम इसको मखसूस करना चाहते हैं
and how it's to be dedicated
कि
to the
इसे
Lord.
किस तरह से खुदा की हजूरी के लिए आरास्ता होना चाहिए.
And then we have the ministry and the people.
और इसके बाद हम इबादत और लोगों को यहाँ लाएंगे.
Now on the dedication of the ministry,
इस खिदमत को मखसूस करने के लिए
I'm going to go into that with the ministers this week.
आज इस हफ्ते में हम बहुत सारे खादमों के साथ इसके बारे में बात करेंगे
in much greater detail.
बहुत वजाहत के साथ.
But I want you to turn with me now to Exodus 29.
आइए खुरूज की किताब में वापस उसके 29वें बाब में चलें. खुरूज की किताब और उसका 29वां बाब.
And I just want to show you this is a shadow of things to come.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक अक्स है उन आने वाली चीजों का.
Now you have to keep symbolism in your mind.
याद कीजिए कि खुदा ने कुछ मसालें देकर निशान दिखाकर हमें बातों को वजाहत की है.
Moses was God's prophet.
मूसा खुदा का नबी था.
He was God's prophet to that age.
उस जमाने के लिए वो खुदा का नबी था.
So he represents the word to the age.
तो उसने उस जमाने में خدا کے کلام کی نمائندگی کی.
Noah was the word to the age.
اور اسی زمانہ کے جو نوح کا نوح کا تھا, نوح اس زمانے کی رہنمائی کرتا تھا.
John the Baptist was the word to the age for a very short time.
یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اس وقت کے لیے آیا جو اس کا تھوڑا ہی سا عرصہ تھا.
Here's Moses representing the word to the age.
ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو موسیٰ کس طرح کا پیغام دے رہا ہے.
And so now God is commanding Moses how to prepare Aaron and his sons for the priesthood.
خدا یہاں موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہارون اور اس کے بیٹے کو کہانت کے لیے مخصوص اور تیار کرے گا.
Aaron is the high priest and his sons are the priests.
آپ جانتے ہیں کہ ہارون جو ہے وہ سردار کاہن تھا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ کاہن تھا.
Chapter 29 verse
1. 29 باب اس کی پہلی آیت سے.
And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them to minister unto me in the priest's office.
اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے.
And then he talks about offering a sacrifice.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہے کہ کس طرح سے قربانی کو پیش کیا جانا چاہیے.
Okay, now stay with me in our types here now.
یہاں میرے ساتھ رہیے اور ان مثالوں کو غور سے سنیے.
The word is going to prepare the ministry for that age.
اس زمانے کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے خدا کا کلام ہے جو کام کرتا ہے.
And in the word is their sacrifice.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر قربانی کا ذکر ہے.
And I'll show you how that works in just a moment.
اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے.
So first is the sacrifice.
پہلے قربانی ہے.
Now verse 4.
اس کی چوتھی آیت کو پڑھیں گے.
And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation and shalt wash them with water.
Are we reading 29?
Chapter 29 verse 4.
ہاں ہاں زور سے پڑھیے جی. Yeah, go ahead.
Okay, so now remember, Moses types the word. So what is it that washes the priesthood? The word.
یاد کیجئے کہ موسیٰ جو ہے وہ کلام کی تمثیل ہے اور خادم کو کون سی چیز دھوتی ہے یا پاک کرتی ہے؟ خدا کا کلام.
Jesus said in John 15 to the disciples,
خدا یسوع مسیح نے یوحنا 15 باب میں رسولوں سے فرمایا,
you are clean by the word I have spoken to you.
اب تم اس کلام سے پاک ہو جو میں نے تم سے کیا.
In Ephesians it says the bride is going to be washed by the water of the word.
اور ہم افسیوں میں دیکھتے ہیں کہ دلہن جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ دھوئی جائے گی, نہ اس میں کوئی داغ نہ دھبا اور نہ کوئی جھری رہے گی. آمین.
Okay, so we find then that the word for the age washes you.
ہم جانتے ہیں کہ زمانے کا اس وقت کا کلام آپ کی صفائی کا سبب ہے.
And to quote the prophet,
اور نبی کو اس منظر پر لانا,
he said you can't get clean in last month's bath water.
Second,
you can't get clean in the bath water you used last month.
Yeah, آپ کبھی ایسا خیال نہ کریں کہ اگر آپ نے غسل کیا پچھلے مہینے تو آپ پاک صاف ہو گئے ہیں.
Yeah, there was always a fresh water, a fresh word.
ہم جانتے ہیں کہ پاک صاف ہونے کے لیے تازہ پانی کی ضرورت ہے اور وہ خدا کا کلام ہے.
Yeah, amen. So preparing Aaron and the priesthood.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون اور اس کو اس کی خدمت کے لیے تیار کرنا.
And that types the five ministry offices today.
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ پانچ خدمتیں ہیں جو افسیو کے خط میں آپ کو یاد ہیں.
Now keep in mind, Moses is the word to the age.
یاد کیجئے کہ موسیٰ اپنے زمانے کے لیے ایک نبی تھا, کلام تھا.
And God said, Moses, you will wash them.
اور خدا نے کہا موسیٰ تو انہیں پاک کرے گا.
You will dress them.
تو انہیں لباس پہنائے گا.
You will anoint them.
اور تو انہیں مسا کرے گا.
You will sprinkle the blood on them.
اور تو خون لے کر ان پر چھڑکے گا.
Because it's always the word for the age that provides all of that.
کیونکہ یہ وہ ہر زمانے کا وہ وقت ہے جو اس وقت کے لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے.
Now what am I saying that for?
میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے.
Unless the minister is walking in the light of the hour, he can't really help the congregation.
جب تک خادم وقت کے لحاظ سے اس روشنی میں نہ چلتا ہوگا جس کی ضرورت ہے, وہ کلیسیا کے لیے برکت کا سبب نہیں ہو سکتا.
Because he himself has not been prepared.
क्योंकि वो खुद इस बात से आरास्ता नहीं, उसे खुद ही पता नहीं वक्त के जमाने का क्या आवाज है, तो वो दूसरों को क्या सुनाएगा.
Now I'll go into that in more detail with the ministers.
आज मैं इसका जिक्र ज्यादातर खादिमों की इबादत में करूंगा.
So we talked about this place.
अब हम इस बात में जगह के बारे में चूंकि बात कर रहे हैं,
this ministry,
इस खिदमत के बारे में बात कर रहे हैं,
and now this people,
और यहाँ के लोगों के लिए.
If I had stayed too long on the ministry, I never would have gotten to this people.
और अगर मैं ज्यादा देर खिदमत में ना रहता तो शायद मैं आज यहाँ आप पर ना आ सकता.
1 Corinthians,
पहला करिन्थियों,
chapter 6,
उसका छठा बाब,
verse 9,
उसकी नौवीं आयत को पढ़ेंगे. पहला करिन्थियों छठा बाब और उसकी नवी. क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाह के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाले, ना जालिम. ओनली बस 9 and 10.
या 9 and 10.
I have it.
You got it?
Yeah.
Okay, now I want you to notice especially verse
11. 11वीं आयत पर जरा हम तवज्जो देंगे.
And such were some of you.
और इसी तरह बास तुम में से थे.
All those bad things he named.
उन तमाम उसने बुरी बातों का जिक्र किया है.
And he says none of these will inherit the kingdom.
और हमने सुना कि ऐसा आदमी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकेगा.
But some of you were just like that.
तो इससे पेशतर हम में से भी बाज ऐसे थे.
Says, but you are washed.
लेकिन लिखा है कि तुम पाक किए गए हो.
Washed how?
किस तरह से पाक किए गए हैं?
By the word.
खुदा के कलाम से.
By the blood.
खुदा के खून से.
But you are sanctified.
लेकिन तुम मुकद्दस किए गए हो.
But you are justified in the name of the Lord Jesus.
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम ने तुम्हें मुकद्दस किया है.
And by the Spirit of our God.
और हमारे खुदा के पाक रूह से.
All things are lawful unto me.
सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं.
Now catch that.
इसको पकड़िए.
There is no touch not, taste not.
हाँ, ये कोई सवाल नहीं कि इसको ना छूना, उसको ना चखना, ये ना खाना, वो ना खाना.
He says all things are lawful to me.
सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं.
But all things are not expedient.
मगर सब चीजें मुफीद नहीं.
All things are lawful to me.
सब चीजें मेरे लिए फायदेमंद हैं, जोर आवर हैं.
But I will not be brought under the power of any.
लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना होऊंगा.
Are you understanding that?
समझे आप इस बात को?
We're not going to miss heaven because we eat this or touch that.
हम इस बात में मुब्तला नहीं हो जाएंगे कि इसको ना छूना और उसको ना खाना और ये ना चखना.
But it's because, but we're not going to in tasting and touching, we're not to be brought under the power of anything.
हमें इन चीजों के ताबे नहीं होना कि ये ना खाओ और वो ना खाओ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है. या
verse 15.
इसकी 15वीं आयत पढ़िए.
No, you know that your bodies are members of Christ.
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मसीह के अज़ा हैं?
Shall I take then the members of Christ and make them members of a harlot? God forbid.
क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कस्बी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं.
What, know you not that he which is joined to a harlot is one body?
क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कस्बी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है?
For two saith he shall be one flesh.
क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे.
But he that is joined unto the Lord is one spirit.
और जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है.
Amen.
Amen.
Flee fornication.
हरामकारी से भागो.
Every sin that a man doeth is without the body, but he that commits fornication sins against his own body.
जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं.
What, know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, and you are which you have of God, and you are not your own?
मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है?
For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो. आमीन.
Amen. Now Amen. We continually talked about walking in the word of the hour.
आप जानते हैं कि हम इस बात के बारे में गौर कर रहे हैं कि वक्त के कलाम के साथ साथ चलना चाहिए.
1 John,
पहला यूहन्ना का खत,
chapter 1,
उसका पहला बाब,
verse 7.
और उसकी सातवीं आयत. पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब, और उसकी सातवीं आयत
But if we walk in the light as he is in the light
पहले यूहन्ना फर्स्ट चैप्टर
वर्स फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7
वर्स
आर यू इन फर्स्ट जॉन
या नो 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 आई एम
First John, chapter 1, verse 7.
Okay, here. Right. पहला यूहन्ना का खत पहला बाप और उसकी सातवीं आयत लेकर हम अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है I've read it.
What is light?
ये क्या है
In the New Testament,
नए अदनामे में
The living word or fulfilled word is light.
आप जानते हैं कि खुदा का फरमूदा कलाम जो हमारी जिंदगियों में पूरा होता है ये जिंदगी है
To put it in the words of the prophet,
अगर हम इसको नबी के साथ कलाम के साथ मिलाकर
देखें, God interprets his word by bringing it to pass,
क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा जब नबी को फरमाता है ताकि ये कलाम पूरा हो
That's light when you see it.
वो रोशनी है जो आप पूरा होते हुए देखते हैं
So we have to walk in the light that he is currently interpreting.
हमें उस रोशनी में चलने की जरूरत है जो हम तक उस वक्त पहुंची है.
It says, then we have fellowship with God.
इस तरह से हमारी खुदा के साथ रफाकत है.
And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
और खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है.
So we see how that Moses being the word to the hour.
हम इस तरह देखते हैं कि मूसा उस जमाने का किस तरह से कलाम लेकर आया.
That he was the one that washed them.
क्योंकि वो कलाम के सबब से वसीला था ताकि वो उनकी तस्दीक करे,
anointed them.
उनको मसा करे.
Yeah, and sprinkle the blood on them.
और खुदा का खून उन पर छिड़के.
Because it's the word of the hour that provides all that.
क्योंकि हम जानते हैं कि ये कलाम ही है जो उस वक्त की नमाइंदगी करता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है.
Every Christian church believes in the Jesus of history.
हम जानते हैं कि हर मसीह कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की तवारीख के ऊपर ईमान रखती है.
And as the prophet said,
और जिस तरह के नबी ने फरमाया,
they think they are under the blood.
वो ये भी महसूस करते हैं कि वो खून के फिदिया के नीचे हैं.
But they are not.
लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता.
For they have rejected the path to the blood, which is the word.
क्योंकि ऐसा करने से उन्होंने खुदा के खून को चूंकि रद्द कर दिया है, उसको अब फिदिये को कबूल नहीं किया. इसलिए ये कैसे हो सकता है कि वो वक्त की आवाज के सामने हैं?
Revelations chapter 21.
आइए मुकाशफा की किताब और उसका 21वां बाब भी पढ़कर जरा देखेंगे. मुकाशफा 21वां बाब वर्स
7 and 8.
उसकी सातवीं और आठवीं आयत. मुकाशफा 21वां बाब सातवीं और आठवीं आयत. या
He that overcometh shall inherit all things.
जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा.
And I will be his God and he shall be my son.
और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा.
But the fearful and unbelieving and abominable and murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death.
मगर बुजदिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, ये दूसरी मौत है.
Now, when I read that many years ago,
काफी अरसा गुजरा जब मैंने इसे पढ़ा,
I expected that all of those would not be there.
तो मैं ये महसूस कर रहा था कि ऐसा नहीं होगा.
But the first one surprised me.
लेकिन पहली बात ने मुझे हैरान कुन कर दिया.
The fearful.
जो बुजदली और खौफ है.
That would be fearful would be listed with unbelieving.
क्योंकि हम देखते हैं कि बेईमानों का
with murderers
और कत्ल करने वालों का
with whoremongers
और वो उनका जो बुतप्रस्त हैं
and the fearful are right there.
और जो बुजदिल और बेईमान हैं हम देखते हैं कि वो हर जगह पर पाए जाते हैं.
Now why would that be?
ये ऐसा क्यों है?
Let's show some illustrations.
आइए यहाँ कुछ तस्वीर के अंदर देखते हैं.
The prophet said.
नबी ने फरमाया.
That your soul is hanging over hell by a chain.
आपकी रूह जो है वो दोज़ख के ऊपर एक जंजीर से लटकी हुई है.
And he said, every link in the chain is the word of God.
और ये जो जंजीर है इसका हर एक लिंक जो है इसका जो है ये खुदा का कलाम है.
And if you break a link, अगर आप is broken,
अगर आप इस चेन को तोड़ें
and you fall into the flames.
तो क्या होगा? चेन टूट जाएगी और आग में आप गिर जाएंगे. समझे बात को?
And here,
just a minute. ये चेन जो है ये खुदा का कलाम है जिसने आपको उसके साथ जोड़ रखा है और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो फिर कहाँ करेंगे आग और गंधक की झील में या
All right, so here's this man with his eyes on the flames.
यहाँ देखते हैं कि एक आदमी ऊपर कलाम की जंजीर को तो पकड़ कर बैठा हो और नीचे आग को भी देख रहा है.
And fearful he's going to fall in.
और तो डर और खौफ दिल बुजदिल के सबब से वो इसमें गिर सकता है.
And what did we just read?
और हमने अभी यहाँ क्या पढ़ा?
He will fall in.
क्योंकि वो इसमें अंदर बुजदिल जो है वो इसके अंदर गिर जाएंगे.
It said the fearful. घबराइए
नहीं, बुजदिल गिरेगा आमीन.
It said the fearful are with the murderers and the sorcerers.
क्योंकि खौफ करने वालों को और बुजदिलों को जो हिस्सा और बखरा है जादूगर और बुत प्रस्तों और कातलों के साथ है.
But here's another man.
यहाँ एक और आदमी को हम देखते हैं.
And he's got a hold of the same chain.
वही चेन है, वही जंजीर है जिसको उसने पकड़ा हुआ है.
And he's over the same flame.
और वो उसी तरह उस आग के ऊपर है.
But he knows the word of God will preserve him.
वो जानता है कि मैंने खुदा के कलाम को पकड़ा हुआ है, ये मुझे गिरने नहीं देगा. आमीन. Hallelujah.
So there is no fear.
उसके दिल के अंदर कोई अब डर नहीं है.
Because he's resting in the word of God.
क्योंकि वो खुदा के कलाम पर उम्मीद रखकर ईमान रखकर बैठा हुआ है.
It cannot fail.
वो गिर नहीं सकता है.
Amen.
Amen.
Now, the kingdom of heaven.
मैं नहीं मैं क्या गया? Okay, मैं यहाँ आऊँगा. अब ठीक है?
Oh, you're standing in the way.
Okay. अब ठीक है? और थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ. हैं? मैं बैठ जाऊँ?
Right. Now, I want to tell you a simple story.
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ.
This is the kind you tell in the Sunday school class.
ये आप उन बच्चों को जो Sunday school के तालिबे इल्म हैं उनको
Very
बता
simple.
सकते हैं. Let me pass that way, so that they can see. I'll be standing here. Yeah. ये बड़ी आसान है.
Yeah.
अब ठीक है?
Okay. Simple lesson.
ये बड़ा आसान सा सबक है.
There are five kingdoms.
पांच बादशाहें हैं, पांच हुकूमतें हैं.
And we're going to look at the laws of the kingdoms.
हम आखिरी बादशाह को देखेंगे.
And learn something about God.
और उसमें से खुदा के बारे में कुछ सबक सीखेंगे.
The lowest kingdom.
आखिरी बादशाह.
Is the mineral kingdom.
ये मिनरल क्या कहेंगे ये?
Yeah, here's the earth.
जेठन हैं? माधुरियात. जहाँ हम जमीन को और चट्टानों को देखते हैं.
All the minerals down in the ground.
और इसके अंदर तमाम मादनियात जो हैं वो पोशीदा हैं.
Now that's the lowest kingdom.
ये आखिरी बादशाह है.
Now let's say that one of these minerals is not happy where he is.
यहाँ जो कोई मादनियात है हम इस ख्याल करें कि शायद वो खुश नहीं है. मादनियात वहाँ मौजूद है पर उसके अंदर खुशी नहीं है.
He said, I don't want to stay here.
और वो चाहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं यहाँ ना ठहरूँ.
I want to move around.
मुझे इधर उधर जाना चाहिए.
I want to do something more than just stay here.
मैं चाहे कुछ इससे ज्यादा करना चाहिए बजाय कि मैं यहाँ ही इसके अंदर बैठी रहूँ.
Now, can the mineral change himself to something else?
क्या आप ये समझते हैं कि ये मादनियात अपने आप किसी चीज में तब्दील हो सकती हैं?
No, he cannot.
No, ऐसा नहीं हो सकता है.
So now the next highest kingdom.
इससे दूसरी जरा आगे चलकर देखें दूसरी बादशाहत.
This is the plant kingdom.
तो यहाँ हम इसे पौधों की बादशाहत कहेंगे, जिंदगी की बादशाहत.
All right. Now the plant kingdom reaches down into the mineral kingdom.
हम देखते हैं कि ये जो पौधे हैं ये उस मादनियात की बादशाहत के अंदर दाखिल होते हैं.
And it can draw the minerals up into itself.
और ये मादनियात को अपनी जड़ों के साथ ऊपर खींचते हैं.
And so now we've learned a lesson.
तो अब हमारे लिए यहाँ एक सबक है.
The lower kingdom cannot lift itself.
ये नीचे वाली बादशाह जो है ये अपने आप ऊपर नहीं आ सकती है.
But the higher kingdom can reach down and draw up.
लेकिन इससे ऊपर वाली बादशाह जो है वो नीचे आ सकती है और वहां से उनको ऊपर ले जा सकती है. आमीन.
आमीन. Now you see where we're going, don't you?
आप देखिए जरा हम कहां जा रहे हैं. या
All right, so now the plant kingdom, he says, oh, I'm not happy being a plant.
यहाँ ये जो बादशाहत में ये पौधे यहाँ रहते हुए ये भी फील महसूस करते हैं कि हम यहाँ खुश नहीं हैं.
I'm stuck right here with my roots in the ground.
मेरे जो जड़े हैं वो तो जमीन के अंदर धसी हुई है.
And I see other things that can move around or maybe fly in the sky.
और मैं यहाँ ही फंसा हुआ हूँ और दूसरी चीजें जो इधर उधर भागती कूदती हैं जाती हैं.
And so he wants to lift himself to a higher kingdom.
इसलिए उसकी भी ख्वाहिश है कि इससे ऊपर जाकर जरा मजा देखे.
Now can he do it?
क्या ये ऐसा कर सकता है?
No, he cannot.
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता.
The next kingdom has to reach down and take him up.
तीसरी बादशाह जो है उसको यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो उस तक पहुंचे और उसे बाहर लाए.
Okay, so the higher kingdom now is the animal kingdom.
तो ये तीसरा दर्जा जो है ये मवेशियों का या हवानात का है.
He reaches down and takes the plant kingdom into himself.
या वो यहाँ पहुंचकर घास को खाता है और उसे अपने अंदर ले जाता है.
And then he becomes part of the animal kingdom.
तो वो हिस्सा जो है अब वो हवानात की बादशाहत का हिस्सा बन जाता है.
Okay, now we understand that principle very clearly.
ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं.
That before you cannot elevate yourself.
आप अपने आप को बुलंदी पर नहीं ले जा सकते.
But a higher kingdom can reach down and lift you.
लेकिन आपके ऊपर जो बादशाहत है वो आपको ऊपर उठा सकती है. आमीन.
Okay. Now this is only three kingdoms.
अभी हमने तीन बादशाहतों को देखा है.
Now we learn our next lesson.
आइए अगले सबक की तरफ चलें.
So now the animal says, I want to move to a higher kingdom.
तो इस हवान के अंदर भी ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे कहीं और जाना चाहिए.
Now the next higher kingdom is the human kingdom.
मुझे इससे ऊपर जाना चाहिए और इससे ऊपर वाली बादशाह जो है ये इंसानी बादशाहत है.
Can he become make himself part of the human kingdom?
क्या ये हवान इंसान का हिस्सा बन सकता है?
He cannot.
No, he cannot.
But here's the next law.
आइए देखते हैं अगले कानून को.
Before
he,
this is a steak.
ये आप देखते हैं कि ये एक steak है, गोश्त का हिस्सा है.
Yeah, okay. So now, before he can move to the next higher kingdom,
इससे पहले कि वो अगले हिस्से के अंदर जाए,
he has to die.
उसे मरना पड़ेगा.
He has to die to his present kingdom.
उसने उसी बादशाहत के अंदर जहाँ वो खुश नहीं है वहाँ उसे मरना पड़ेगा.
So before the ox could move to part of the human kingdom,
इससे पेशतर के बैल जो है वो इंसानी बादशाहत के अंदर दाखिल हो,
he had to die to the animal kingdom to become part of the human.
उसको अपनी बादशाही के हिस्से में मरकर इस इंसानी बादशाहत के हिस्से में दाखिल होना पड़ेगा. आमीन.
Now what's the next higher kingdom?
इससे ऊपर वाली बादशाहत क्या है ये देखते हैं.
It's the kingdom of God.
ये खुदा की बादशाहत है.
Can you pull yourself into the kingdom of God?
क्या मरियां बगैर उत्ते जा सकने हैं?
No.
No.
The kingdom of God has to reach down.
ये खुदा की बादशाहत है जो आप तक पहुंचेगी और आपको ऊपर खींचेगी. आमीन.
But what's the next rule?
लेकिन अगला कानून क्या है इसके लिए?
You must die.
आपको मरना है गुनाह की हालत में.
You cannot go into the kingdom of God alive in yourself.
ओह खुदा की बादशाहत में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप मरकर हमेशा की जिंदगी को ना पाए.
You must die to yourself to go into the higher kingdom.
खुदावंद में हमें मरना है ताकि हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हों. आमीन.
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 All right. Now we're going to take one more lesson.
आइए एक और सबक को हम सीखेंगे. समझ आ गई इस गलती? पंजाएं सेंच कोई खुश नहीं, है ना? पर उत्ते जान वास्ते पंजवें सेंच सानू की करना पड़ेगा. पहले मरना है. हर किसी को हमने देखा कि मर कर फिर वो जिंदगी पाता है.
Genesis chapter 1.
पदाश की किताब उसका पहला बाब.
Somebody get it in your Bible.
अपनी बाइबल को खोलिए.
Genesis chapter 1.
पदाश की किताब उसका पहला बाब.
Verse 1.
उसकी पहली आयत.
Somebody read. Yeah.
हाँ, पढ़िए.
Somebody read it.
कोई पढ़ो.
खुदा ने खुदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सनसान थी और गहरा
और अंधेरा था.
Just verse 1.
कोई पहली आयत. सिर्फ पहली.
Just one only. Yes. Now we don't know when the beginning was.
हमें कोई पता नहीं कि कब शुरू आगाज हुआ, कब इस बात का आगाज हुआ.
Yeah. We don't know.
हमें कोई पता नहीं.
God is eternal.
खुदा हमेशा रहने वाला है.
For him there is no beginning.
खुदा का कोई शुरू नहीं है.
But there is something that God calls the beginning.
तो खुदा ने किसी चीज को तो शुरू कहा है ना.
Now of course we can find that out easily.
हम इसको बड़ी आसानी से जान सकते हैं.
Because John 1:1 says,
क्योंकि यूहन्ना पहले बाप उसके पहले आयत में लिखा है,
In the beginning was the word.
इब्तिदा में कलाम था.
All right, so before there was the word,
इससे पहले तक के कलाम आया,
there was just the invisible eternal spirit.
हम देखते हैं कि ऐसी रूह जो नदीदनी रूह है उसका वजूद था.
And then everything was created by the word.
तो हम देखते हैं कि हर चीज जो है वो कलाम के सबब से खलक की गई.
Are we together now so far?
हाँ, क्या आप अभी तक हमारे साथ हैं? समझ रहे हैं जो बात है?
Yes, yes.
In the beginning,
शुरू में, इब्तिदा में,
when was that?
ये कब था?
I don't know.
मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं.
A million years ago,
हो सकता है कि हजारों साल गुजर गए हों.
Billions of years ago,
और अरबों साल गुजर गए हों.
I don't know.
मुझे इसका कोई पता नहीं.
But anyway, whenever the beginning was,
लेकिन जब कभी भी इब्तिदा थी,
God created heaven and earth.
खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया.
The sun,
सूरज.
The moon,
چاند
stars
ستارے
earth
زمین
whenever it was in the beginning God created it
اور جب بھی ہو سکتا ہے اس کا ہم اندازہ کریں خدا نے یہاں سے شروع کیا
okay now read verse 2
اب اس کی دوسری آیت کو پڑھیے پیدائش پہلا باب دوسری آیت زور سے پڑھیے ذرا
زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی
All right, now that verse is just a few thousand years ago.
یہ آیت جو ہے یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ کچھ ہزاروں سال گزرے ہیں کہ ایسا ہوا ہے
So that was the condition of earth when God started to create Eden.
یہ حالت تھی اس وقت جب خدا نے باغ عدن کو بنانا شروع کیا
So in the beginning God created heaven and earth.
ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا
And the prophet says Perhaps there was a previous civilization.
تو نبی نے اس بات کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ آبادی تھی
a previous creation
جو پہلے سے خلق کی گئی تھی
that fell under judgment
جو اس عدالت کے سبب سے غضب کے سبب سے ہلاک ہوئی
and then the earth is left in space
اور پھر جو زمین ہے یہ خلا کے اندر رہ گئی
and it's shattered over by darkness
اور اس کے اوپر تاریکی اور اندھیرا چھا گیا
it's under judgment
اب یہ اس ججمنٹ کے نیچے ہے عدالت کے نیچے
ہے when judgment comes light is removed
جب عدالت آتی ہے تو روشنی وہاں سے چلی جاتی ہے جب اندھیرا آتا ہے تو روشنی کیوں دی پھر
verse
بٹن بند کر دی تو پھر اندھیرا
verse 3
اس کی تیسری آیت کو پڑھیے
اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا آمین اور روشنی ہوتی
آمین
اوکے Now, when God said in verse 3, let there be light,
خدا نے جب تیسری آیت میں کہا کہ روشنی ہو جا
that did not create light.
یہ روشنی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی
the light was created in verse 1.
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی پہلی آیت میں جو ہے وہ تخلیق ہو چکی تھی
when God created heaven and earth.
جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا
So what he was calling for
کس بات کو وہ بلا رہا تھا
was for the light to strike the earth
وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ روشنی زمین پر ٹکرائے
and for the light to strike the earth God had to move away the mist or cloud that was around the earth
اسی سبب سے کہ روشنی زمین کو ٹکرائے اور وہ ساری تاریکی وہ ساری دھند جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے
Now this is in the seven seals book so
ye aap saat moron ki kitab mein pad sakte hain
so it's important
ye bada zaruri hai gaur kijiye
so god removed the mist
khuda ne us tariki ko us dhund ko hataya
and then the earth the light could strike the earth
taake roshni jo hai wo zameen par pad sake
genesis 1:11
padash ki kitab pehla bab uski 11th ayat
خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائیں اور ایسا ہی ہوا
Here comes the important part.
یہ بہت اہم بات ہے غور سے سنیے
God did not create the seed
خدا نے بیج کو تخلیق نہیں کیا ہے
The seed was there from the previous creation.
ہم جانتے ہیں کہ بیج پہلے سے پہلی تخلیق کے سبب سے وہاں زمین میں موجود تھا
Because it, but it could not come forth
یہ اگ نہیں سکتا تھا باہر نہیں آ سکتا تھا
bring of its own kind
اپنی قسم کا پھل پیدا نہیں کر سکتا
because
تھا
it needed light.
کیونکہ اس کے لیے روشنی کی ضرورت
so,
تھی
Once the mist was removed,
اور جب وہ دھند جو ہے وہ تاریکی ہٹائی گئی
and the sunlight could strike the earth
تاکہ سورج کی روشنی زمین پر پڑ سکے
it could bring forth from the seed that was already there
آمین تو وہ اس بیج سے جو وہاں پہلے سے موجود تھا روشنی پڑنے کے سبب سے زندگی ظاہر ہوئی آمین
and then the prophet said
اور پھر نبی نے کہا
and that types right back to the human soul
oh ye jo hai iska muqabla hamari jaan ke sath hai jo insaan ke andar pai jati hai samjhaiye
there was a pure soul there was a pure soul in adam
adam ke andar bhi ek paak aur khaas rooh thi
but he fell
lekin jab wo gir gaya
judgment had to strike the human race
khuda ki adalat ne usko radd kiya
ephesians chapter 2
ephesians do bab should we
read verse 1 and 2
uski dus pehli aur dusri ayat padhe pas aap jab tum pehle apne gunahon aur kasooron ke sabab se murda hi the تو عین وقت پر مسیح خداوند ہے نا. پڑھیے پہلی اور دوسری آیت, دوسرا باب پہلی اور دوسری آیت. ہاں جی ہاں آمین.
ایوری پرسن بورن تھرو سیکس,
ہر وہ شخص جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے,
سیٹن ہیز اے رائٹ ٹو اٹیچ ہمسیلف ٹو دیٹ ہیومن.
تو شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے, خدا نے اختیار دے رکھا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اپنی صفت جو ہے اس کے ساتھ شامل کرے.
When something is pure from the hand of God, Satan cannot touch it.
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب خدا کے ہاتھ سے کوئی خاص پاک روح آتی ہے, شیطان اس کو چھو نہیں سکتا ہے.
But once it is perverted,
لیکن جب وہ تبدیل کی جاتی ہے یا اس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے,
Satan can take a hold of
it. تو پھر ملاوٹ شدہ چیز میں شیطان بڑی آسانی سے آ سکتا ہے.
So we were all born by sex.
آپ جانتے ہیں کہ ہم انسانی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں.
That's not God's perfect way for
his children. یہ خدا کا وہ طریقہ نہیں تھا جس کے سبب سے خدا ہمیں پیدا کرنا چاہتا تھا.
Was Adam born by sex?
کیا آدم جو ہے وہ جسمانی خواہش سے پیدا ہوا تھا؟
No.
No,
was Jesus Christ born by sex?
کیا یسوع مسیح جسمانی خواہش سے پیدا ہوا؟
No.
Are you born again by sex?
کیا آپ نے نئی پیدائش جو ہے وہ جسمانی طریقے سے حاصل کی ہے؟
No.
You're born again by the seed incorruptible, the word of God.
ہاں, آپ کی پیدائش ایسے تخم سے ہوئی ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے.
Adam came from the word.
آپ جانتے ہیں کہ آدم کلام سے آیا.
Jesus came by the word.
یسوع کلام سے سبب سے پیدا ہوا.
Your new birth comes by the word.
آپ کی پیدائش نئے کلام سے ہوئی ہے.
So sex birth is a perversion from God's perfect way.
یہ جسمانی پیدائش جو ہے یہ خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے جو ہمیں گناہ کے اندر رکھتی ہے.
But that's the only way we know.
اور یہ ہم جانتے ہیں کہ صرف یہی طریقہ ہے جس کے سبب سے انسان پیدا ہوا.
So that's why we all come into this world fallen.
آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو گناہ کی صورت میں ہم پناہ پکڑتے ہیں.
Because we are under the dominion of a worldly nature.
کیونکہ ہم یہاں انسانی فطرت, جسمانی فطرت کے تابع ہیں.
The scriptures he read said we were under the dominion of the prince of the power of the air.
ہم جانتے ہیں کہ اگر کلام کے اندر پڑھیں کہ ہم ایسی روح کے تابع ہیں جو جسمانی ہے.
That was a shadow over our soul.
یہ وہ سایہ تھا جس نے ہماری روح کو تاریک کر رکھا تھا, جس طرح کہ زمین اس دھند سے تاریک تھی.
Worldly nature.
یہ دنیاوی فطرت ہے.
Ephesians 2 verses 1 to 3.
جس طرح ہم نے افسیوں 2 باب پہلی اور تیسری آیت تک پڑھا.
Under this worldly nature.
اس دنیاوی خواہش کے نیچے.
The woman wants to dress sexy.
ہاں, عورتیں جو ہیں وہ ایسا لباس پہننا چاہتی ہیں جو کہ غلط قسم کا ہے.
To be pretty.
تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے.
That's okay.
یہ ٹھیک ہے, خوبصورت نظر آنا اچھی بات ہے.
To be sexy.
لیکن کسی کو گناہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے بدن کو آرائش کرنا,
that's the worldly nature.
تو یہ خدا, یہ وہ فطرت ہے جو دنیا دنیاوی فطرت ہے.
Under this worldly nature.
اس دنیاوی فطرت کے نیچے.
She wants to cut her hair.
اپنے بالوں کو بھی کٹوانا چاہتی ہے.
The man, he wants to be the big shot.
اور آدمی بھی اسی طرح ایک بہت بڑی شخصیت اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے.
It's in that worldly nature.
یہ دنیاوی فطرت ہے جو جسم ہم پر لاگو کرتا ہے.
I don't know whether you'll know all those words.
Okay.
Emulation. That's the competitive spirit.
وہ فطرت جو مقابلہ کی روح اختیار کرتی ہے.
Malice.
بیلنس جو کہ ہمارا
strife.
متوازن رکھتی ہمیں.
Envy.
Envy.
Jealous of each other.
ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت اور حسد کرنا.
Lust of the eyes.
آنکھوں کی خواہش.
Lust of the flesh.
اور جسم کی خواہش.
Pride of life.
اور زندگی کا غرور, شیخی.
That's all in that worldly nature.
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جسمانی فطرت میں ہمیں نظر آتی ہیں.
And that's that shadow over the soul.
اور اس نے ہماری روح کو تاریک کر رکھا ہے.
But for the child of God,
لیکن خداوند یسوع کے لوگوں کے لیے,
the predestinated child of God,
وہ جو خدا کے ارادے میں ہے جس کو اس نے پہلے سے جانا,
there is a seed of predestination in that soul,
اس روح کے اندر پہلے سے ایک تخم رکھ دیا گیا, بیج رکھا گیا ہے,
from a previous creation,
پہلے ہی اس تخلیق سے,
which was created in the mind of God,
جو خدا کے ذہن کے اندر تھی.
And then when God, here's a quote from the prophet.
آئیے دیکھیں جو نبی نے ایک کوڈ دیا ہے.
Just as there was a mist over the earth and it could not bring forth,
جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ زمین کے اوپر تاریکی تھی اور وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی,
so there is a mist over the human soul,
اسی طرح انسان کی روح پر بھی ایک تاریکی چھائی ہوئی ہے,
a result of the fall in Eden.
یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو باغ عدن کے اندر ہوا کے سبب سے واقع ہوا.
Now what is light?
روشنی کیا ہے؟
When God interprets His word by bringing it to pass, that's light when you see it.
جب خدا اپنے کلام کو ہم پر کھولتا ہے, یہ ہمارے لیے روشنی ہے.
So once you see what God is doing in your day,
اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں خدا آپ کے لیے کیا کر رہا ہے,
then the sunlight of the revealed word,
اور وہ روشنی جو منکشف کلام کے سبب سے ہم پر آتی ہے,
can strike your soul,
آپ کی روح کو چھوتی ہے.
The Bible says the believers have the mind of Christ.
بائبل میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کے اندر مسیح کا ذہن ہے.
That's not in your brain.
وہ آپ کے اس ذہن کے اندر نہیں ہے.
It's in your soul.
وہ آپ کی جان کے اندر ہے.
The mind of Christ is in your soul.
یسوع کا ذہن آپ کی جان کے اندر ہے.
Light brings life.
روشنی جو ہے یہ زندگی کا اثر ہے.
The token.
اور یہ محبت ہے.
The literal life of Christ.
اور یہ خداوند یسوع مسیح کی وہ زندگی ہے جو اس نے نمونہ دیا.
Only the message of the hour can quicken the elect of the hour.
اور یہ صرف وقت کی آواز ہی ہم تک پہنچا سکتی ہے.
When God interprets His word by bringing it to pass, that's light when you see it.
یہ جب خدا اپنے کلام کو منکشف کرنا چاہتا ہے, وہ روشنی ہے جو آپ کو نظر آئے گی اور اس کے سبب سے آپ کی زندگی کے اندر ایک زندگی پیدا ہوگی.
And then once the sunlight strikes that seed in your soul,
aur jab wo roshni rul qudus ki aapki jaan ke andar chhuti hai,
it will bring forth His life,
wo apni zindagi ka asar wahan chhodti hai,
His works,
uske kaam,
faith,
iman,
virtue,
uski riyazat,
knowledge,
ilm,
temperance,
bardasht,
patience,
amal,
godliness,
aur khuda khaufi,
brotherly kindness,
bratrana ulfat,
charity,
اور یہ محبت.
That's the stature of a perfect man.
آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص آدمی کا ڈھانچہ ہے جو پترس دو باب کے مطابق ہے.
It's all in the seed that's already in you.
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیج کی صفت ہے اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے.
The fruit of the spirit.
آپ جب روح کے پھل دیکھیں,
love, joy,
پیار, خوشی,
meekness,
اور اس کے ساتھ محبت,
temperance,
برداشت,
peace,
امن,
long suffering,
اور برداشت کرنا لمبی دیر کے لیے,
gentleness,
gentleness, نرمزاجی,
goodness,
خوشی,
faith,
اور ایمان.
It's all in the seed.
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیج کے اندر موجود ہیں.
Now when you plant seed in your garden,
جب آپ کوئی بیج اپنے باغ میں لگاتے ہیں,
what's one of the main things you have to do to have a good garden?
تو آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ آپ اچھا باغ رکھیں, آپ کو اس میں کیا کرنا ہے,
you have to water it,
اس کو آپ نے پانی دینا ہے.
That's read the word of God and pray.
جو وہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور دعا کریں.
And you have to keep the weeds out of your garden.
اور آپ کو جڑی بوٹیوں کو اپنے باغ سے دور رکھنا ہے, نکالنا ہے.
Your old nature will continually try to rise up.
آپ کی پرانی فطرت جو ہے اگر آپ خدا کے پاس آ گئے ہیں تو یہ اٹھے گی کہ پھر کسی طرح سے آپ کو پکڑ کر واپس لے جائے.
And you have to kill it.
تو آپ نے اس کو کاٹتے رہنا ہے, ان جڑی بوٹیوں کو نکالتے رہنا
ہے.
اپنے باغ سے ان جڑی بوٹیوں کو کاٹتے رہیے, صاف رکھیے.
Confess your sins.
اپنے گناہ کا اعتراف کیجیے.
He's faithful and just to forgive you.
کیونکہ وہ تابع دار ہے, وفادار ہے تاکہ وہ آپ کو معاف کرے.
So we dedicate this place.
اس جگہ کو ہم مخصوص کرتے ہیں.
This ministry.
اس خدمت کو مخصوص کرتے ہیں.
And this people.
اور ان لوگوں کو مخصوص کرتے ہیں.
All for the glory of God.
تاکہ خدا کا جلال یہاں سے ظاہر ہو.
Let's pray.
آئیے دعا کریں.
Lord Jesus.
خداوند پیارے آسمانی باپ.
We didn't say many things that we had on our notes.
خداوند ہم نے ان تمام باتوں کو بیان نہیں کر پایا جو ہمارے پاس نوٹس پر موجود تھی.
But I just took too long.
لیکن میں نے کچھ زیادہ وقت لیا.
But may each person receive the portion they had need of.
تاکہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کا حصہ مل جائے.
We put the service in your hands.
اب ہم پھر عبادت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں.
The seed has been planted.
کیونکہ بیج جو ہے وہ بویا جا چکا ہے.
May it bring forth a crop for your glory.
او یسوع, تاکہ تیرے جلال کے لیے یہ فصل پھل لائے.
We ask it in Jesus' name.
خداوند یسوع مسیح کے نام میں.
آمین.
آمین. آمین.